Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Prarabdha bankar samne aave और वो फल देने के लिए तत्पर हो जाए तो अच्छा, घर मिल भी सकता है, असंभव नहीं है। और या फिर साक्षात भगवान प्रसन्न हो जाए तो अच्छा घर मिल सकता है, उसके सामने ये दो ही विकल्प हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं यहां, हे मानस राजहंस, मन का राजा, मानस राजा, मन में ही राजा बनकर रहने वाला मानस राजा, राजहंस, तुम्हारे लिए एक बढ़िया घर है, मैं बता देता हूं। उसके अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है बेटा, तुमको रहना हो तो वहां जाकर रहो। कहां महाराज? गिरिजांग्री, गिरिजानाथांग्री सौधांतरे, भगवान शिव के चरण रूपी घर, गिरिजा नाथ अंग्री, गिरिजा के जो नाथ हैं स्वामी भगवान शिव, उनके अंग्री माने चरण, वो तुम्हारे लिए, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही वो घर है। सौधांतरे घर का नाम है, राजमहल का नाम है सौधांतर, सौधा, और उसके अंदर जाके तुम रहो। तो यदि तुम वहां रहने लग गए तो तुम जैसा चाहते वैसा ही है वो घर। समग्र प्राकृतिक सौंदर्य और प्राकृतिक छटा से भरा हुआ है, वहां किसी चीज की कमी नहीं है, हर चीज वहां विद्यमान है। बोले बत्ती है कि नहीं है? वहां सबसे पहले बत्ती है कि नहीं, बिजली है कि नहीं, इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि नहीं? हम बहुत पहले कैलाश मानसरोवर की यात्रा में गए थे, हमारे साथ उमा भी थी, गए थे यात्रा में। वह तिब्बत में गए, एक शहर में जाकर बैठे तो वह बत्ती ही नहीं था। अब ट्रैवल एजेंट ले गया था, उसको कहा कि भाई बत्ती तो है ही नहीं। बोले महाराज यहां तो बत्ती है ही नहीं, कैलाश में क्या बत्ती है। ले जी, दूसरी जगह गए तो टॉयलेट ही नहीं था, सब खुले में लोटा लेकर जाओ। अब बंबई वासी खुले में लोटा लेकर क्या जाया जाएगा उनसे? सब लोग मुझे आकर कहने लगे सुबह सुबह, महाराज टॉयलेट क्या छे, कहां है टॉयलेट? हमने कहा अब कहां बताएं भाई, खुला मैदान है जहां भी घर। बोले महाराज वो हमसे नहीं होगा, अब क्या करें। फिर जिस ट्रैवल एजेंट ने हमको ले गया था उसको कहा, अरे बना दो कुछ, तो उसने बनाया, नहीं बनाया भगवान जाने भाई, है? खुले मैदान में जाओ। तो कई बार कहीं जाते हैं तो कहीं कोई सुविधा विद्यमान है तो कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होता, कुछ उपलब्ध होता है तो कुछ और उपलब्ध नहीं होता। एक जगह गए, सब सुविधा तो थी लेकिन वहां खाने के लिए कुछ नहीं मिला। बेचारा वो ऐसा था कि भोजन बढ़िया नहीं दिया, सब यात्री हल्ला करने लग गए, ये तो भोजन ठीक नहीं बना भाई, सुबह का बासी गरम करके खाने दिया। थका हुआ दिन भर के यात्री, वो चाहते थे कि शाम को गरम गरम कुछ खाएं पिएं, तो अब वो सूप वगैरह कुछ देता। तो ये सारी चीज है जीवन में, अनुभव के हैं, ये भी एक अनुभव है। कहते हैं कि वहां बत्ती है कि नहीं उस राजमहल में? बोले उस राजमहल में बत्ती की बात करते हो, दुनिया में जितने बत्ती पावर हाउस हैं वही तो चला रहा है, वहीं से तो सब प्रकाश निकलता है, वो तो वहां बत्ती ना हो। हाँ, यदादित्य गतम तेजो जगत भाषय ते अखिलम यमसी यग्नऊ तत्तेजो विद्यमामकम, उसी से सारी बत्ती, सारा प्रकाश तो उसी से जा रहा है भाई। वाणी में जो वाक् ज्योति है, कान में जो श्रवण शक्ति ज्योति है, नेत्र में जो रूप प्रकाशित करने की ज्योति है, रोशनी है, ये सारे नाना छिद्र घटोदर स्थित महा दीप प्रवाभास्वरम है। एक ऐसा घड़ा है जिसके अंदर एक महादीप जल रहा है और उस महादीप की रोशनी अनेक छिद्रों से बहिर्गच्छति, बाहर सब रोशनी, अंदर तो जल रही है, जल रही है, छिद्रों के माध्यम से वही रोशनी बाहर भी इदम पुष्पमालाम प्रकाशित कौन कर रहा है, वही रोशनी, अंदर की रोशनी। जानाम्यति, मैं जानता हूं, ये उसी की तो रोशनी है। तो तुम फिर वहां बत्ती है कि नहीं की बात करते हो भैया? हाँ तो है, तो खैर कैसी बत्ती है, कौन सी है? आकिरणे नकराजि कांति विभवई, भगवान शिव के जो चरण हैं, चरण में जो अंगुलियां हैं, और भगवान शिव के चरण की जो अंगुलियां हैं उनमें जो उभरे हुए नख हैं, उसकी रोशनी इतनी सुंदर है, है? दस दस बल्ब जले हैं, कितना, दस उंगुलियां है ना, नख कांति, देखो साहित्यिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं शंकराचार्य जी। आकीर्णे माने उभरे हुए, उठे हुए। तो कभी कभी किसी किसी के पांव की बनावट ऐसी होती है कि वो नख भी गड्ढे पड़ जाते हैं, उठते नहीं है, और अच्छे नख तो वे है उंगलियां जिसमें नख उठे हुए, उभरे हुए, वो लंबे नहीं है, वो तो सूर्पणखा हो गई, लंबे की बात नहीं कह रहे यहां, बीच में उठना चाहिए, वो अच्छे स्वस्थता का प्रतीक है, अच्छे शरीर का प्रतीक है वो। और शरीर में जब विकार होता है तो वो नख भी गड़ जाते हैं, गड्ढे पड़ जाते हैं, या चपटे पड़ जाते हैं। तो ये साहित्यिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं शंकराचार्य जी। आकिरणे नकराज कांति, वो भी कैसे हैं, उद्यत सुधा वैभव ही आधौते। तो भगवान शिव तो फिर पैदल चलते हैं, नंगे पांव से चल रहे हो और सब पांव में धूल लगा हुआ हो, कीचड़ लगा हो, तो फिर वो नख के निकलने वाली जो कांति रोशनी छटा कहां से वो रोशनी करेगी भाई? बोले नहीं नहीं महाराज, भगवान शिव ऐसे प्रमादी नहीं है, वो आप बैठे राजमहल में हैं, मानस राज में रहें और पांव कीचड़ से भरा हुआ लेके जाएं, ऐसा नहीं है, अच्छी तरह धो के रखा है उन्होंने। किसे धोया है? उद्यत सुधा वैभव ही राधौते ही, पूर्व दिशा से उदित होते हुए चंद्रमा के वो चोमा अमृत से उन्होंने अपने चरण को धो रखा है। देख लो भगवान शिव के लिए क्या आश्चर्य की बात है भाई, है चंद्रमा रूपी सोम उस अमृत के अपने चरण प्रक्षालन करने में भगवान शिव को क्या समस्या है? हम लोगों को तो पानी भी नहीं मिलता है समय में, पानी कटौती, पानी कटौती, आज पेपर में आ गया, हाँ अब फुल पानी आ रहा है, नहीं तो दो दिन से 50% पानी का कटौती था, तो क्या पांव धोएंगे, क्या नहाएंगे, कितनी जगह तो पानी नहीं मिलता पीने को, है? भगवान शिव को क्या कमी है अमृत से अपने चरण धो में, तो हर्जा क्या है? भया दस्याद अग्निस्तपति, भयास्तपति सूर्य, भयात इंद्रश्च वायुश्च मर्त्यो धावति पंचमा, चंद्रमा तो उसी परमात्मा के इशारे से काम कर रही है, तो उनके लिए चरण प्रक्षालन करने के लिए अमृत देने में हम चंद्रमा को क्या आपत्ति है भाई? और चंद्रमा की जो श्वेत है धवली पना स्वच्छ, उससे धोने के बाद फिर चंद्रमा की रोशनी में भगवान शिव के सफेद नख, उभरे हुए नख, फिर उसकी रोशनी देखो क्या सुंदर। मान लो कि भगवान शिव का चरण तुम्हारे हृदय में आ जाए तो तुम्हारे लिए तो 12 महीना दिवाली हो जाए भाई। क्या सुंदर छटा है उसमें। आकिरणे नखराज कांति विभवे ही उद्यत सुदा वैभवेर आधोते पिच पद्मराग ललिते हंस ब्रज हीराश्रिते। और साथ ही भगवान शिव के चरण रूपी सौधांतर में यानी राजमहल में उन्हीं की नख की रोशनी तो है ही है, और साथ में क्या है, पद्मराग ललिते और चरण कमल की जो पद्म है राग, और पद्मराग एक मणि का भी नाम है, पुखराज बोलते हो ना, पुखराज रत्न है ना, मोती आदि है, रूबी पुखराज बर्मा में खूब बोलता है, रूबी और पुखराज, लाल पत्थर और हरा पत्थर, तो नीलम पद्मराग ललित है उससे युक्त है। एक एक उस घर के एक एक स्थान में अनेक रत्नों से जुड़ा हुआ है। हम सब ब्रज ही आश्रित ही, और वहां जो सरोवर है, क्योंकि भगवान शिव का चरण पद्म है, चरण कमल, तो कमल वहीं होगा जहां जल होगी, तो बढ़िया सरोवर भी वहीं पर है, पानी की कोई कमी नहीं है भैया। और उस सरोवर में हंस ब्रज ही आश्रिति, अनेक हंस आदि पक्षी वहां विचरण करती है। कहते हैं कैलाश मानसरोवर में राजहंस रहता है, मानसरोवर में राजहंस रहता है। तो हमसे पूछा किसी ने, महाराज आपने राजहंस देखा? हमने कहा राजहंस था कि प्रजाहंस था ये तो हमको पता नहीं है, है? लेकिन इतने ठंडियों में भी उस सरोवर में पक्षी बहुत तैर रही थी, बहुत से पक्षियां तैर रही थी। अब दूर दूर, हम तो नजदीक तो आए नहीं, वो अब हम वहां तक जा भी नहीं सकते थे। बीच बीच में सरोवर में 80 किलोमीटर का परिघा है उस सरोवर का, इतने सबसे हाईएस्ट ऊंचाई में, पृथ्वी में ऊंचाई में इतना बड़ा सरोवर भूगोल में दूसरा नहीं, इतनी हाइट में मानसरोवर, और इतना स्वच्छ जल है, तो बीच बीच में पक्षियां तैर रही थी। अब वो राजहंस है कि प्रजाहंस है हमको पता नहीं, लेकिन थे जरूर। अमरनाथ में जाकर आपने कबूतर देखा कि नहीं? पूछते चिमन भाई के साथ गए थे, यानी चिमन भाई हम दोनों गए थे ना, 7 आदमी थे हम लोग अमरनाथ, बहुत साल हो गए, कब गए थे भाई? नहीं नहीं आप थे नहीं साहब, अच्छा अच्छा हाँ आप नहीं थे, हाँ डॉक्टर अतुल मजूमदार थे मेरे साथ, वो प्रतिमा बहन थी, हो प्रतिमा बहन थी, उनकी बहन कल्पना बहन थी, डॉक्टर मजूमदार थे, हम लोग 8-10 आदमी थे भाई, अमरनाथ की यात्रा, ये सब यात्राएं हैं। तो हमसे पूछते हैं कि अमरनाथ में कबूतर की जोड़ी देखा कि नहीं, बोले एक नहीं 1000 थे जोड़ी वहां, तो बोले केवल 2 कबूतर रहते, बोले रहते होंगे सत्ययुग में, कलयुग में तो कलयुग में तो 1000 कबूतर पहुंच गए भाई, क्योंकि कलयुग में तो उत्पादन बहुत, जनसंख्या केवल मनुष्यों की थोड़ी बढ़ रही है, हंसों की भी तो बढ़ेगी, कबूतरों की भी तो बढ़ेगी ना भाई। तो इसी तरह उस सरोवर में राजहंस, हम सब ब्रज हीराश्रित ही, और उस महल की विशेषता है भाई, जिस महल में तुम्हें रहने के लिए हम कह रहे हैं। नित्यम भक्ति बधु गणेश चरहसी स्वच्छा विहारम कुरु। अब ये पूरे साहित्य में पहुंच गए शंकराचार्य जी। तुमको राजमहल में राजा जैसे विलासता को चरम सीमा में पहुंचते हैं राजा लोग, राजमहल में भौतिक विलासता की चरम सीमा का उपभोग करते हैं, है ना? सुरा सुंदरी का उपयोग करते हैं, वही विलासता का चरम सीमा है। सामान्य इतिहास में तो राजा लोग, राज्य बिगड़ा है, राज्य प्रजा विप्लव हुआ है, किसके चलते राजा लोग भोग विलास में लगते हैं, तब जाकर राज्य अव्यवस्थित होता है। तुम उस राजमहल में रहना। नित्यम भक्ति वधु गणेश च, नित्य भगवान शिव के प्रति अनन्य भाव रूपी भक्ति रूपी वधुओं के साथ तुम रहसी स्वेच्छा विहारम करो, एकांत में उस भक्ति वधुओं के साथ आनंद का अनुभव करो, विहरण करो भाई। स्थित्वा मानसराज हंस गिरिजा नाथांग्रि सौधांतरे। गिरिजा, गिरी माने पर्वत, उनकी पुत्री गिरिजा और उनके जो नाथ हैं, स्वामी हैं, उनके अंग्री माने चरण कमल रूपी सौधांतरे राजमहल में स्थित्वा रहकर हे मानस राज हंस स्वच्छा विहारम करो, बड़ा आनंद पूर्वक वहां तुम विचरण करो, निवास करो। इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि भगवान शिव के चरण के आश्रय में रहने वालों को संसार में किसी भी वस्तु की कमी नहीं होती है, और इसीलिए परमहंस, यहां राजहंस की बात कर दिया है, तो परमहंस लोग भगवान शिव के चरण को छोड़कर अन्यत्र जाते ही नहीं है। नित्य निरंतर परमहंस सन्यासी, वो तो हम सब पक्षी हैं और ये परमहंस सन्यासी है, इसलिए पक्षी जाति एक जगह कभी नहीं रहते हैं, इसलिए परमहंस सन्यासी एक जगह कभी नहीं रहते हैं, एक जगह नहीं रहते हैं। अब पहले तारीख को पहुंच जाएगा, उड़कर कहां पहुंच जाएगा, कहां पहुंचेगा, तो काठमांडू पहुंचेगा पहले तारीख को, सोमवार सुबह 9 बजे उड़ेगा और पक्षी काठमांडू पहुंच जाएगा। अब भरोसा नहीं है कि काठमांडू से फिर उड़कर कहां पहुंचेगा, तैयारी चल रही है यूएसए की, वहां भी उड़ सकता है, परमहंस है जो एक जगह बैठे हैं, एक जगह बैठे तो वो तो हंस भी नहीं है, पक्षी है, साधारण पक्षी है जो विचरण करता रहे। चरई वेती, इसीलिए सन्यासियों को संबोधन किया जाता है श्रीमत परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, ये विशेषणों से संबोधन किया जाता है सन्यासियों को, ज्ञानियों को, विद्वान सन्यासियों के लिए श्रीमत परमहंस परिव्राजकाचार्य। घूमने में वो तो मास्टर ऑफ परिव्राजक, क्या बोलते हैं, टूरिस्ट, परिव्राजकाचार्य घूमने में मास्टर, परिता ब्रजति गच्छति अटति इति परिव्राजक, घूमने वालों में वो आचार्य है, मुख्य हेड है परिव्राजकाचार्य। श्रोत्रिय, सारे उपनिषदों का जिन्होंने खूब अध्ययन श्रवण मनन किया हुआ है, ऐसे श्रोत्रिय। और जिनकी जहां घूमे तो भी, जहां भी जाएं तो भी जिनकी निष्ठा अद्वैत ब्रह्म के अलावा और जगह उनकी निष्ठा नहीं है, इसलिए ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, ऐसा विशेषण से संबोधन करते हैं। तो परमहंस, हंस और परमहंस चार प्रकार के सन्यासी हैं। हंस परमहंस बहुधक कुटीच कुटीच, सन्यास दीक्षा लेने के बाद कुटी बनाकर आश्रम बनाकर जो एक जगह रहते हैं वह कुटीच सन्यासी कहलाते हैं। और दूसरे कुटीच और बहुधक, बहुधक ये सन्यासियों के विशेषण है। कुछ सन्यासी ऐसे होते हैं जहां खूब पानी पर्याप्त तो वहां रहते हैं, और हमस जो वेदांत प्रचार प्रचार में घूमते रहते, और परमहंस तो वह कुछ भी परिग्रह नहीं करते, दिगंबर विरक्त होकर विचरण करते हैं, प्रारब्ध में जो मिल गया वो खा लिया। परमहंस विचरण करते, एक रात से ज्यादा कहीं भी नहीं ठहरते, ठहर गए तो फिर फंस गए, ठहर गए तो फंस गए। इसीलिए नित्य निरंतर वैराग्य का अभ्यास भी करते रहते हैं महात्मा लोग, तो वे परमहंस। हंस ब्रजराश्रित, उन महात्माओं ने नित्य निरंतर, परमहंसों ने जिसका आश्रय ले रखा है, कभी छोड़ा नहीं है, वहीं आश्रित हैं। और यही कारण है कि वहां उनको सब योगक्षेम मिल जाता है, उन्हीं में आश्रित हैं। आकिरणे नखराजिकांत विभवेर रुद्यत सुदा वैभवैर आधोते पद्मराग गली ललिते हंस ब्रजैराश्रिते नित्यं भक्ति वधु गणेश चरसी। या भक्ति के साथ विचरण करो, रमण करो, मन को समझा रहे हैं, भक्ति के साथ रमण करो। या रमण करो का अर्थ विलास करो नहीं है, और विलास ही करोगे ये अर्थ करोगे तो भी ठीक है, क्योंकि भक्ति शब्द का अर्थ शंकराचार्य जी ने स्वस्वरूपा अनुसंधानम भक्तिरित्ति विधीयते, वह ब्रह्मचिंतन, सतत ब्रह्म विद्या ही स्वरूप अनुसंधानिका जो भक्ति है, जो ब्रह्म विद्या जिसको कहते हैं, हे मन उसी वृत्तियों के साथ तुम भ्रमण किया करो, मन में उसके अलावा कोई दूसरी वृत्ति का आलंबन आश्रय न हो। इसी को नित्यम भक्ति नित्यम आसुक्ते रामृते कालम नयत वेदांत चिंतया, श्रुति ने कहा है, तुम यदि अपना कल्याण चाहते हो तो जगो तब से लेकर जब तक निद्रा न लगे तब तक सतत वेदांत विचार ही करते रहना। मनाग भी अवसरम ना दद्यात, थोड़ा भी अन्य विषयों के प्रवेश चिंतन का अवसर मन को देना ही नहीं। उसी को कहा नित्य भक्ति वधु गणेश च रहसी, रहसी का अर्थ होता है एकांते, रहसी है ना, एकांते सुखमस्यताम परतरे ब्रह्मात्मन स्थीयताम। शंकराचार्य जी उपदेश पंचक साधन पंचक में कहते हैं साधकों को, हे साधको तुम समूह में प्रपंचों में रहोगे तो वृत्ति बिगड़ सकती है, इसीलिए एकांते सुखम आस्यता। और एकांत का अर्थ यहां वेदांती लोग करते हैं एक एव अंत इति एकांत, सबका अथा तो आदेश नेति नेति करते हुए अंत में एक ही अद्वितीय बचे, उसका नाम क्या है, एक एव अंत एकांत। जो दृश्य प्रपंच है अथा तो आदेश नेति 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 अतत व्यावृत्तियाम चकितम अभिधत्ते श्रुतिरपि, अतत का सब व्यावृत्त करो हटाओ सब, अतत अतत माने तत्माने परमात्मा, अतत माने अनात्मा पदार्थ, उन सारे अततों का व्यावृत्त हटाओगे तो अंत में जो बचेगा वो एक ही बचेगा, तो अधिष्ठान सत्ता और प्रकाश एक ही होगी, सजातीय विजातीय सुगत भेदत्रय शून्य, जो एक अंत में बचेगा उसी को इस प्रकार का जो चिंतन है इसी को एकांत कहते हैं। और अंत शब्द का अर्थ अंदर कहोगे तो अंदर एक है, इंद्रियां अनेक हैं, मन अंतकरण अनेक हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार चार अवयवों से बना हुआ अंतकरण है, पांच ज्ञान इंद्रिय पांच कर्म इंद्रियों से बना हुआ इंद्रियां समूह हैं, प्राण अपान समाभ्यान उदान ये पांच प्रकार की प्राण वृत्तियां हैं। लेकिन अंदर सबसे अंदर एक ही मैं है, क्योंकि हम लोग व्यवहार में भी क्या करते हैं, किसी से पूछा जाए तुम्हारी इंद्रियां कितनी हैं, तो सत्संगी लोग जवाब देंगे कि हमारी दस इंद्रियां हैं। जो सत्संगी नहीं है तो उनको तो पता ही नहीं है कि कितनी इंद्रियां हैं, इंद्रियों को ही उनको पता नहीं कि कितनी इंद्रियां हैं। किसी भी सामान्य व्यक्ति से पूछ लो, तुम आज चले जाना घर में जो भोजन बनाने वाला महाराज है ना, उससे पूछना, महाराज इंद्रियां कितनी है तुम्हारी, बोलो पूछ लेना। भोजन बनाने वाला जो महाराज होगा, महाराज तुम्हारी इंद्रियां कितनी है, वो क्या समझेगा है? वो क्या कहेगा, इंद्रियों का अर्थ पत्नी लगाएगा, योगी पत्नी है बोलेगा वो, इंद्रियों का अर्थ पत्नी कहेगा वो। अरे इंद्रियां पूछ रहे, पत्नी नहीं भाई है? तो इंद्रियां क्या है मैं नहीं जानता हूं, उसको पता ही नहीं। आपके घर में झाड़ू पोछा कर लगाने वाली बाई को पता है इंद्रियां कितनी है, है? पूछो ए भाई इकड़े आओ इकड़े हाँ पूछो फिर तुम्हारे इंद्रियां कितनी है, काई मनता काई मनता है, वो पूछेगी बेचारा क्या बोल रहे हो, हमको कुछ पता नहीं है, वो बिचारी को क्या पता है। तुम लोग इतने दिनों से वेदांत श्रवण करते हो तो तुम लोगों को अपनी इंद्रियां अभी तक कितनी है कौन कौन सी हैं, बहुत लोगों को पता नहीं है। हो जब पूछते हैं इंद्रियां कितनी है तो जवाब नहीं देते, ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी है नाम बोलो, नहीं बोल पाते हैं, अभ्यास नहीं करते, सुनते हैं अभ्यास नहीं करते हैं, तो ज्ञान इंद्रियों का नाम नहीं बता पाते, कर्म इंद्रियों का नाम बताओ तो नाम नहीं बता पाते हैं। बोलो इंद्रियां दस हैं, प्राण कितनी है, पांच हैं मुख्य और पांच उपप्राण हैं, मुख्य और अमुख्य करके दस प्राण हैं, अंतकरण कितनी है, मन बुद्धि चित्त अहंकार चार अंतकरण हैं, ले जी और तुम कितनी हो है? इस शरीर में तुम कितनी हो, कोई कहेगा मैं दो हूं तीन हूं चार हूं है? घर में तुम लोग चार हो सकते हो, परिवार में कुटुंब में अपनी संख्या तुम्हारी हो सकती है, लेकिन तुम इस शरीर के अंदर तुम कितने हो, एक हो। अंदर शरीर के अंदर एक होने के कारण यही तो एकांत है, बस अंदर वृत्ति को कर लो, बाहर जाने वाली वृत्ति को अंदर लाओ और अंदर उसी एक तत्व का चिंतन करो, उससे बढ़कर एकांत अब बम्बई में कहां खोजने जाओगे भाई है? हमारे एक महात्मा थे, उनको याद आ गया, एक कथा करते करते दिमाग में पुराने संस्कार आ जाते हैं ना, तो पहले पावलुआ में मलबार हिल एंगन गार्डन के पास ब्रह्मलीन स्वामी त्याग मूर्ति गणेशानंद जी का फ्लैट था पावलुआ बिल्डिंग में, है ना, और वहां संत लोग रहते थे, हम भी रहते थे, हम पांच साल तक वहां रहे, तो तीन कथाकार हमेशा वहां रहते थे और वहीं से तीन जगह कथा संचालन करनी पड़ती थी और उनके रहने और खाने की व्यवस्था वहां होती थी। तीन कथा महात्मा हमेशा रहते थे, स्पिरिचुअल सेंटर में वहीं से कथा करनी है, वहां इंद्र कुंज हैंगिंग गार्डन में था तो वहां वहीं नहीं ईश्वर भवन वहां गैरेज में कथा चलती थी, ईश्वर भवन के गैरेज में है, तो वहां भी एक महात्मा कथा चाहिए, और ये पैडल रोड में पटेल सदन में कथा चलती थी, कन्हैयालाल पटेल का घर वहीं बेसमेंट हॉल था वहां कथा चलती थी, और डी रोड में वहीं से कथाकार जाना पड़ता था, तो महात्मा लोग इस तरह वहां रहते थे। तो हम बता रहे थे एक महात्मा थे, वो आए स्पिरिचुअल सेंटर में कथा करते थे, वहां से पैदल आते थे और ये बीच में गली है, वहां से उतर के फिर स्पिरिचुअल कथा करके घूमते समय में इधर से फिर जाके फिर ये बाबुलनाथ मंदिर के बगल के सीढ़ी से चढ़ाई करके जाते थे। एक दिन कुछ लड़के लड़कियां कुछ वहां सड़क के किनारे बैठे थे, महात्मा ने कुछ बोल दिया। क्या बोल दिया?